उसका आधार लेंगे विषय को निश्चित चलना नहीं होगा। आपको दिखेगा स्क्रीन पर, जैसे कि श्रोताओं की आदत है वो पीछे बैठते हैं एंट्री पे ताकि बाद में आने वालों को अंतराय कर्म का उदय हो, उसके वो नौकर में बने। मैं चाहता हूँ वे अंतराय कर्म का बंध से बचना चाहें तो जितने भाई पीछे बैठे हैं सब आगे की जगह फिलअप कर दे। अगर कोई वॉलेंटियर बहनों में से अगर सहयोग देना चाहें तो मेरे से मिलें। एंट्री की कुर्सियां वे अंतराय कर्म के प्रबल निमित्त हैं, तो अभी यहाँ साइड में भी रख सकते हैं। आशा है मुझे रोज कहना पड़ेगा और रोज आप सबका स्थानांतरण करना पड़ेगा। चार अनियोग के माध्यम से जीतराजता का पोषण कैसे करना चाहिए, इस विषय पर ये गोष्ठी मोना के द्वारा आयोजित की जा रही है। उस गुरुदेव श्री के व्याख्यान में और समग्र जिनवाणी में विशेषतः पंचासी काय के आधार से हम सब ये जानते हैं कि चारों अनियमों का तात्पर्य वितराग भाव है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करें, किस तरीके से हम अनियमों का स्वाध्याय करें ताकि हमारे वितराग भाव का स्वरूप भी समझ में आवे और हमारे अभिप्राय में उसका पोषण होवे। इस प्रयोजन से ये मौना द्वारा गोष्ठी आयोजित की जा रही है, आत्महित के लिए बहुत उपयोगी और मार्मिक विषय अपने लिए उन्होंने चुना है। मेरे ख्याल से इसमें रजनी भाई का ही चिंतन बहुत ज्यादा सक्रिय रहा और भी उनके सहयोगियों ने उसे कन्फर्म किया होगा। मैं हृदय से उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ इस विषय को सिलेक्ट करने के लिए। मुझे जो विषय दिया गया है उसकी चर्चा मैं प्रारंभ करूंगा, उसके पहले दो मंगलाचरण अपन करेंगे। पहला तो कॉमन, दूसरा गोष्ठी का स्पेशल। आप सभी हमारा साथ देंगे, सबको याद होगा अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तीन को स्वरूप जान लागते भरी जो भक्ति काय को नामाय स्तुति को चारी है धन्य धन्य तुम इत काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख है तो हम चाहत हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी। रजनी भाई की बहुत भावना थी परंतु अचानक उन्हें समझ लो अपना स्वास्थ्य के कारण वो यहाँ आ नहीं सके, लेकिन वो हमसे बराबर जुड़े हुए हैं संचार माध्यमों के द्वारा। उन्होंने मुझे ये आदेश दिया है कि ये पुस्तिका में जो पेज नंबर 3 पर उन्होंने एक छंद लिखा है आचार्य अमृत चंद्र का कलश कोट किया है 32 नंबर का, और उन्होंने उसका गुजराती अनुवाद भी लिखा है। उन्होंने खास कहा कि जब आप शुरू करें तो मेरी भावना की पूर्ति करते हुए इस कलश का पाठ करें, अनुवाद का पाठ करें और ये भावना लोगों तक पहुंचाएं। संस्कृत में मैं एक पंक्ति पढ़ूंगा, आप सब रिपीट करेंगे और गुजराती अनुवाद सभी एक साथ पढ़ेंगे। मज्जन्तु निर्भर ममी सममेव लोका, आलोकमुच्चलति शान्तरसे समस्ता, आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करणीं हरेण, प्रोन्मन्न एष भगवानवबोध सिन्धो, रजनी भाई का चिंतन और उनकी भावना आचार्य अमृत चंद्र का अनुकरण करते हुए इस छंद में झलकी है, इसलिए उन्होंने इसको इस बुकलेट में जगह दी है। ये कलश जो है जीव जीव अधिकार लिखने के बाद, पूर्व रंग लिखने के बाद, अमृत चंद्र देव ने सारे जगत के प्राणियों को निमंत्रण दिया है। आप देखिए जैन दर्शन की दृष्टि, उसका चिंतन, उसका क्राइटेरिया कितना विशाल और व्यापक है। वो अकेले जैनियों की बात नहीं करता, मात्र मनुष्यों की बात नहीं करता, बल्कि प्राणी मात्र के लिए उसने ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा में स्नान करने का निमंत्रण दिया है। इससे ये सिद्ध होता है कि जैन दर्शन का जो मूल तत्व ज्ञान है वो विश्व का तत्व ज्ञान है, वो विश्व व्यवस्था है। उसमें किसी देश की सीमा, किसी संप्रदाय की सीमा, वो जो व्यवहारिक भेद है मनुष्य देव नार की त्रेंच, ये कोई सीमा उसमें लागू नहीं पड़ती। छह द्रव्यों का स्वरूप और उसमें भी विशेषकर जीव पुद्गल का स्वरूप, ये सर्वव्यापी तत्व ज्ञान है। और इस तत्व ज्ञान को समझने का एकमात्र प्रयोजन और लाभ ये है कि हमारा अनादि काल का मोह नष्ट हो। अभी हम जो कषाय समुद्र में डूबे हुए हैं उसके बदले ज्ञान समुद्र में स्नान करें और निराकुल असीमरी आनंद का अनुभव करें। भले दो चार भव बाकी हों तो भी हम आनंद से ही जिए और शाश्वत आनंद को प्राप्त करें। आप देखिए अपने गुरुदेव श्री के शासन में जितनी भी संस्थाएं स्थापित हुई हों, सोनगल के बाद समझ लीजिए कोई ठोस संस्था जो है अखिल भारतीय स्तर पर काम करने वाली, टोडरमल स्मारक जयपुर, मंगलायतन, इसी श्रृंखला में बहुत से ट्रस्ट हैं और बहुत सी संस्थाएं हैं। ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि सभी की एकमात्र उदात्त भावना यही है कि प्राणी मात्र तत्व ज्ञान से जुड़े और इसी को लेकर उन सबके प्रयास, उनकी एक्टिविटीज वो सब चालू रहती। मोना एक सॉफ्टवेयर संस्था है जिसका कोई ठोस हार्डवेयर तो दिखता नहीं, कहीं बिल्डिंग बनाई हो, कहीं स्मारक बनाया हो, कहीं हेड ऑफिस डाला हो। दुनिया में जितने कंप्यूटर हैं वे सारे मोना के हेड ऑफिस हैं। जितने लोग तकनीक से परिचित हैं वे सभी उसके मैनेजर हैं, सभी उसके ऑर्गेनाइजर हैं। ऐसा ही हमने नवीन भाई एक प्रयास छोटा सा अभी दिवाली का जो हुआ उसमें लोगों से बात की कि कम से कम इस एरिया में रहने वाले, नासिक, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, खासकर जिनके पेरेंट्स देवलाली से जुड़े हैं, उनकी तीसरी पीढ़ी भी देवलाली से जुड़े, उसके लिए भी एक ऑनलाइन कहानी युवा मंच बनाया जाए। दो चार लोगों से हमने बात की है, खैर वो अलग विषय है। ये तो मोना की बात हुई और इस गोष्ठी का जो उद्देश्य है उसकी बात हुई। किसी भी विद्वत गोष्ठी की सफलता का मूल तत्व ये है कि वक्ता विद्वान को ये पता होना चाहिए कि किस विषय बिंदु पर मुझे अपने विचार रखने हैं। और अगर कम्युनिकेशन नहीं हो, आपस में चर्चा नहीं हो, हो सकता है मैं भी वो विषय ले लूं, दूसरे भी वही ले ले, रिपीट हो जाए और कुछ जो जरूरी है वो रह जाए। तो ये जो एक अपने मुमुक्षु भाई जो खासकर विदेश में रहते हैं, मैं बहुत गहराई से अनुभव करता हूं कि इनकी हर चीज वेल प्लानिंग और व्यवस्थित चिंतन पूर्वक मति व्यवस्थित करके वो होती। भारत जैसा नहीं होता कि जो देख लेंगे जो होगा सो होगा, जो विद्वान आएगा उसका करा देंगे, उसकी जो मर्जी होगी उसका ले लेंगे। भारत अभी भी उसी लीक पर चल रहा है मनीष जी, लेकिन इन लोगों की ये आदत ही है, उसके बिना ये काम नहीं करते। मेरे ख्याल से एक गिलास पानी भी पीते होंगे तो प्लानिंग से पीते होंगे कि कितने बजे पीना है और कौन सा किस गिलास में पीना है। ये इनकी जीवन शैली का प्रमुख अंग है जो लौकिक जीवन में भी उपादेय है और तत्व ज्ञान में, तत्व प्रचार में तो अनिवार्य है, वो होनी चाहिए। आप देखिए एक गोष्ठी पूरी होती है और दूसरी गोष्ठी का चिंतन प्रारंभ हो जाता है, तो ऐसी गोष्ठियां व्यवस्थित और सफल क्यों नहीं होंगी जो साल भर पहले ही से अभी पूरी होगी नहीं और रजनी भाई का फोन आ जाएगा आगे के लिए कौन सा विषय सोच रहे हैं आप। मैं सोचता हूँ मेरे से बात करते, 10 लोगों से बात करके वो उसका निर्णय करते। इसी पद्धति से उन्होंने इस बार चार चार दिन के 2 खंड किए, 2 भाग किए और प्रत्येक वक्ता को उसी की राय सलाह के अनुसार उसका विषय बिंदु दिया। जिनको द्रव्यान योग मिला वो तो समझ लो सारा अपना मुमुक्षु समाज ही द्रव्यान योग का रसिक है ही और हर एक को उसमें बड़ी सुविधा और आराम दिखता है, क्योंकि स्वयं टोडरमलजी ने लिखा है मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो अध्यात्म शास्त्रों में है। सीधी भगवान आत्मा की बात, जैसा कि अभी अपन ने 320 गाथा का प्रवचन सुना, शुद्ध त्रिकाली द्रव्य है वो तो उदय बंद निर्जरा मोक्ष इनका करता है ही नहीं, पर जो त्रिकाली द्रव्य की अनुभूति रूप शुद्ध परिणति है वो भी ये उदय बंद इत्यादि की अकड़ता है। तो जहाँ खुलकर ऐसी बातें होती हो त्रिकाली द्रव्य की और उसकी अनुभूति की, तो ये द्रव्यान युग तो वीतरागता का हिमालय पर्वत ही है। इसे समझने के लिए कोई इधर उधर के सहारे की जरूरत नहीं, लेकिन बाकी के जो अनुयोग हैं उनमें भाषा और शैली वो डायरेक्ट वीतरागता को टच नहीं करती, लेकिन वो वीतरागता की ओर इंडिकेट करती है, वीतरागता की ओर संकेत करती है, और उसकी चरम बिंदु भी वीतरागता ही है। आप यूं समझ लीजिए, अगर वीतराग भाव का प्रयोजन और पोषण ना हो तो वो जिनवाणी ही नहीं है। इसी उद्देश्य को लेके डॉक्टर साहब ने अपनी देवशास्त्र गुरु पूजन में जो पंक्तियां जिनवाणी के बारे में लिखी वो जिनवाणी के डायरेक्ट स्वरूप को सीधे व्यक्त करती हैं। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। और राग धर्ममय धर्म रागमय अब तक ऐसा जाना था, शुभ कर्म कमाते सुख होगा बस अब तक ऐसा माना था, पर आज समझ में आया है वीत राग का धर्म। आहा, राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व कहा। द्रव्यानि युग के बाद में मेरी दृष्टि में अगर कोई दूसरा अनियोग है जो हमें वीतरागता से संपर्क करने में सहायक होता है, हो सकता है संबंध में हम आप संबंध से मेरा मतभिन्न भी हो, लेकिन मुझे प्रथमान योग लगता है। प्रथमान योग में जो कथाएं उसमें जो घटनाएं उन घटनाओं के माध्यम से जो मैसेज दिया जाता है, संसार के दुखद संसार का स्वरूप, दशा चारों गति की दयनीय दया का किंतु न यहाँ विधान, और चारों गतियों के भ्रमण की कथाएं, वो सब अपने को प्रथमान योग में मिलती। पुण्य पाप के उदय में क्या कैसे प्रसंग बनते हैं और उसमें ज्ञानी किस तरह से अपना तत्व ज्ञान और भेद विज्ञान जीवंत रखते हैं, तो ये मैसेज हमें प्रथमान योग से भी मिल जाता है। लेकिन काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसमें समझ लीजिए जैसे कंकड़ निकाल के गेहूं को अलग करने में थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि अपनानी पड़ती है, वैसे कथा कहानियां फिर उनके जो नायक हैं कथा कहानियों के पात्र हैं उनकी रागात्मक क्रियाएं, उनके रागात्मक विचार, उनके राग द्वेष, उनके युद्ध, उनके प्रेम, ये सबका वर्णन है। और उसमें हमें ये देखना है कि किस तरह से उन्होंने इसका समझ लीजिए इसको जानते हुए अपने गायक भाव को ऊर्ध रखा और मोक्ष पथ पर गमन करते रहे। चाहे वो भरत चक्रवर्ती का वर्णन हो, चाहे रामचंद्र जी का वर्णन हो, 24 तीर्थंकरों का वर्णन हो, तिरसठ तलाका का वर्णन हो, और उसके बाद में अगर कोई हमको हेल्प करता है तो ये चरणानियोग और करणानियोग ही हेल्प करते। करणानियोग के बारे में चर्चा करने के लिए अपने ही युवा वर्ग के बहुत अच्छे उच्च कोटि के अंतर्राष्ट्रीय विद्वान संजीव भाई यहाँ पधारेंगे, वो आपसे चर्चा करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोना वालों को कि उन्होंने मुझे चरणानुयोग सौंपा, चरणान योग हार्डवेयर है और उसमें जो विकराग भाव है उसकी फीलिंग है वो सॉफ्टवेयर। अब आप देखिए हार्डवेयर के बिना हम सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते, पर सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर क्या है वो क्या बोलते हैं उसको, गार्बेज ही है। किस काम का, अकेली सीढ़ी पड़ी हो 5 रुपए में बन जाती है वो किस काम की यदि उसमें सॉफ्टवेयर न हो। चारों अनियों के बारे में हमारी कैसी समझ होनी चाहिए, चारों अनियों का कैसा स्वरूप होना चाहिए, होना चाहिए मतलब हमारी दृष्टि में कैसा आना चाहिए, और चारों अनियों किस तरह हमें विकराग भाव की ओर ले जाते हैं, इसका सबसे विस्तृत स्पष्टीकरण यदि मिलता है तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 8वें अधिकार में उपलब्ध होता है। मुझे तो बहुत विकल्प आता है कि पंडित जी टोडरमल जी साहब के लिए किसी बहुत ही भावुक व्यक्ति ने, न केवल भावुक बल्कि वो उनके हृदय को जानने पहचानने वाला होगा, उनकी महानता को अनुभव करता होगा, उसने उन्हें आचार्य कल्प कहकर के उनके प्रति जो अत्यंत बहुमान है वो व्यक्त किया है। सचमुच में वो भावुक के साथ बुद्धिमान भी होगा जो उसने आचार्य के साथ कल्प लगा दिया। आजकल जो संस्कृत डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होती है उसको आचार्य बोलते, मास्टर डिग्री जो होती है, जैसे हम भी आचार्य हैं कपड़े पहने हुए, जैन दर्शनाचार्य कहलाते। बहुत साहित्याचार्य होते हैं, ज्योतिषाचार्य होते हैं, अन्य दर्शनों में भी आचार्य होते हुए डिग्री है वो इसमें सिलेबस के हिसाब से। लेकिन जैन दर्शन की परंपरा में आचार्य शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। साध्य के बाद साधकों में यदि हम सबसे पहले किसी को याद करते हैं तो आचार्य परमेश्वर को याद करते हैं। अनंत और सिद्ध के बाद यदि किसी को नमस्कार करते हैं तो आचार्य परमेश्वर को नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे आप तरें और पर को तारें ऐसी वृत्ति वाले होते हैं, विशिष्ट ज्ञान ध्यान तप के धनी होते हैं, अपने रत्नत्रय को सुरक्षित रखते हुए सैकड़ों मुनियों के संग में भी समझ लो उनको मार्गदर्शन देना, गाइड करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो यद्यपि उनके मोक्ष मार्ग में जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन वो एक्स्ट्रा वो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाती है, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल की भांति। तो आचार्य नम्य दिगंबर संतों में एक विशेष नायक जो है मुनि संघ के, वे आचार्य कहलाते। तो उसने सोचा होगा कि अगर हम अकेला आचार्य कहेंगे तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो जाएगा और टोडरमल जी के प्रति ये न्याय भी नहीं होगा बल्कि उनकी विराधना होगी। किसी भी व्यक्ति को यदि उसकी भूमिका से अधिक हम सम्मान वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप समझ लीजिए उसका सम्मान नहीं बल्कि अनजाने में हम उसकी छवि को नीचे ही लाते। हम सबको वर्तमान में भी ये चीजें समझनी चाहिए। तो आचार्य कल्प कहा, अभी हम समय सार का स्वाध्याय यहाँ करते हैं तो उसमें द्रविलिंगी मिथ्या दृष्टि को भी सुर्ख केवली कल्प शब्द का प्रयोग आया है निर्जल अधिकार में, जैसे न चार दिन सुर्ख केवली कल्प इस टाइप का। तो टोडरमल जी को जिसने आचार्य कल्प बोला वो निश्चित रूप से ये समझता होगा कि 8वें अध्याय से वो व्यक्ति प्रभावित होगा। 8वां अध्याय क्या चीज है भाई साहब उसमें बहुत डिटेल में लेंगे, मैं तो मेरे मतलब का जो अंश है उसको ही कोट करूंगा कि अन्य आचार्यों ने तो जिनवाणी लिखी, हर एक आचार्य ने भिन्न भिन्न अनियोगों के ग्रंथ लिखे टोडरमल जी ने ये लिखा कि जिनवानी कैसे लिखी जाती है और कैसे पढ़ी जाती है, यानी उन्होंने जिनवानी के ऊपर रिसर्च की वास्तव में देखा जाए और किस सावधानी से जिनवानी पढ़ना चाहिए उसकी चर्चा उन्होंने की। थोड़ा आपकी जानकारी के लिए ये भी कह दूं कि सातवें और आठवें अध्याय के बीच की सीमा रेखा बहुत पतली है, वो तो अपन ने छाप दिया कि ये सातवां ये आठवां, अगर कंटिन्यू लिख दिया जावे तो भी पता नहीं चलेगा कि अध्याय बदल गया। देखिए हर अध्याय के अंत में उन्होंने आशीर्वचन लिखा है कि ऐसा करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन सातवें अध्याय के अंत में आशीर्वचन नहीं है। प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में मंगलाचरण है लेकिन आठवें अध्याय के प्रारंभ में मंगलाचरण नहीं, यानी वो स्वयं ही चिंतन में थे कि इसको अलग अलग करना चाहिए या एक साथ ही रखना चाहिए। हमें ये देखना है कि इन दोनों में क्या समानता है और क्या फर्क है। थोड़ा आप ध्यान देंगे, समानता यह है कि जिनवाणी पढ़ने के बावजूद भी इस जीव को भाव भाषण क्यों नहीं होता, सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता। सातवें अध्याय के प्रारंभ में उन्होंने जो भूमिका लिखी है वो आठवें पे भी लागू होती, जो जीव जैन है जिन आज्ञा को मानते हैं उनके भी सूक्ष्म मिथ्यात्व रह जाता है और मिथ्यात्व बैरी का अंत भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। यानी सातवां और आठवां अध्याय ये दोनों प्रकार के इंजेक्शन एक ही बीमारी वालों के लिए, कि जिनवाणी पढ़ते हैं स्वाध्याय करते हैं फिर भी मूल नाश होना तो छोड़ो, कमजोर भी नहीं होता बल्कि उल्टे और पुष्ट और हो जाता है। जैसे सांप को दूध पिलाने से उसका जहर ही पुष्ट होता है, ऐसे ही जिनवाणी का दूध हम पीते हैं लेकिन अंदर मिथ्यात का जहर इतना मजबूत बैठा है कि वो दूध अंदर जाकर के उल्टे जहर ही बन जाता है। ये बहुत दुखद बात है, ये हम सबकी बहुत बड़ी अपात्रता है। ये तो ऐसा हुआ कि जैसे माँ का दूध जो है वो ही शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है, वो उसके अंदर विल पावर पैदा करता है, रोगों की प्रतिरोधक शक्तियां पैदा करता है, यानी बच्चे को सबसे ज्यादा पोषक तत्व अगर किसी से मिलते हैं माँ से मिलते हैं, तो जिनवाणी हमारी माँ है। लेकिन कोई बालक कितना तीव्र पाप का उदय वाला होगा कि जिसे अपनी खुद की माँ का दूध ही नहीं पचे, माँ का दूध पिए और उसको उल्टे और वो बीमार और हो जाए। दुर्भाग्य से अपन सबकी दशा ऐसी हो रही है कि हम जिनवाणी माँ का दूध तो पीते हैं लेकिन मोह नष्ट होने के बजाय और पुष्ट होता जाता है। इसके दो कारणों की चर्चा टोडरमल जी ने की है। पहला कारण सातवें अध्याय में बताया है, दूसरा कारण आठवें अध्याय में बताया है। सातवें अध्याय में उन्होंने नए शैली को नहीं जानने के कारण ये जीव जिनवाणी का मर्म नहीं समझ पाता, नयों की कथन पद्धति, और उसी संदर्भ में उन्होंने निश्चयाभास व्यवहाराभास अव्ययाभास इन सबका वर्णन किया। आठवें अध्याय में अनुयोग शैली को नहीं जानने के कारण ये जीव जिनवाणी का मर्म नहीं समझ पाता, यद्यपि अनुयोग भी नयों में लिखे गए हैं लेकिन निश्चय व्यवहार से कथन करने की शैली अलग है और अनुयोगों की स्टाइल अलग है। जैसे कि अपन चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग की बात करें, किसी व्यक्ति को मान लीजिए शरीर में वो खुजली सी हो जाती है ना, तो एक वैद्य ने उसको तेल दिया, कोई समझ लो जड़ी बूटी वाला, क्या आप ये तेल लगाएंगे तो आपको खुजली में राहत मिलेगी, और एक दवाई उसने एक लिक्विड खान पीने के लिए भी दे दिया कि रक्त दोषांग तक ये आपके खून की शुद्धि करेगा, दो लिक्विड हो गए, एक पीने के लिए खून की शुद्धि करने वाला और एक लगाने के लिए वो खुजली को साफ करने वाला, आराम देने वाला। अब कल्पना कीजिए अगर वो गड़बड़ कर बैठे और जो लिक्विड पीने का है उसको खाज पे लगा ले रहे और जो खाज पे लगाने का है उसको पी ले रहे, तो क्या होगा? द्रव्यान योग में जो रस है उसका जो समझ लीजिए लिक्विड है वो पीने के लिए, वो पचाने के लिए है, वो अनुभव करने के लिए है। उसे हम आचरण के चश्मे से देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाए, और यही होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो रात में खाओ चाहे दिन में खाओ इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर जैसे आटा इतने मर्यादे का होना चाहिए, बाजार की चीजें नहीं खाना चाहिए, मधुमास मध्य नहीं खाना चाहिए। आप तो कहते आत्मा करते नहीं, आत्मा तो मोक्ष का भी करता नहीं है, बंध का भी करता नहीं, और इधर खाने पीने में इतना वो विस्तार करते हैं। तो ये वही गति हो रही, ख्याल में आया? तत्व ज्ञान जो है निश्चय ने की शैली में जो शुद्ध वस्तु तत्व का ज्ञान दिया जाता है वो कर्ता बुद्धि मिटाकर पर्याय से दृष्टि हटाकर स्वभाव सन्मुख होने के लिए वो ज्ञान दिया जाता है। और जो आचरण वाला प्रकरण है तो उसे फिर हम इसमें लगा ले, उसी को ही धर्म मान लेते हैं, उसी को ही मोक्ष मार्ग मान लेते हैं, यानी हम उसको लगाने वाली दवाई को पीने लगते हैं। ये दोनों प्रकार की भूलें अनियोग शैली को समझने से मिटती। इसलिए बड़ा उपकार है चोरमल जी का और महाभाग्य है हमारा कि उनके साथ जो दुर्घटना घटी वो नौवां अध्याय जब प्रारंभ हो गया तब घटी। यद्यपि न जाने वो क्या लिखना चाहते थे, वो डॉक्टर साहब ने तो उसका एक अनुमान करके इसकी टेबल भी बनाई है, इसकी प्रस्तावना में भी है, लेकिन वो तो एक हेडिंग है। उनका चिंतन जो है उसकी थार पाना, उसका अनुमान करना भी, अपन जैसे अल्पस्रतम जीवों के बस की बात नहीं। फिर भी उन्होंने जितना दिया, जो कुछ भी दिया, वो हमारे भाव का अंत करने के लिए पर्याप्त है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से उन्होंने ये आठवां अध्याय मानव जिनवाणी के ऊपर रिसर्च करके लिखा हो। मैं ये जो चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान मैंने खोजा है, मैं काफी समझ लो इसमें चिंतन में रहा कि कौन सी चीज को आधार बनाया जाए कि हम चरणानुयोग से वितरागता का पोषण किस प्रकार होता है वो हम कह सकें, तो उसका हमको बेस क्या होनी चाहिए। उन्होंने मेरे को पूछा भी आप अपने पॉइंट बना ले रहे हैं, ये बना ले रहे हैं, कोशिश करूंगा भाई। तो एक तो प्रस्ताव आया प्रसाद सिद्धि उपाय का, लेकिन उसमें भी आध्यात्मिक शैली से चरणानुयोग का वर्णन है। वास्तव में अहिंसा का आध्यात्मिक वर्णन और भाव प्रधान वर्णन जितना सुंदर प्रसाद सिद्धि उपाय में है वो अन्यत्र दुर्लभ है। लेकिन वो एक टॉपिक पर ही आधारित है, हिंसा और अहिंसा पर, बाकी के चीजों की चर्चा बहुत कम उसमें आई। खैर, तो मैंने ये सोचा कि हम हर साल प्रशिक्षण शिविर में ज्ञानी स्वभाव के 12 व्रतों की चर्चा करते और जब पढ़ाते हैं तब भी ये बात आती है कि ये इसको आखिर मोक्ष मार्ग कहा क्यों जाता है, जबकि ये जल की क्रिया है। और कोई जरूरी नहीं है कि जैसी क्रिया हो रही है वैसे ही परिणाम हो गए। हो सकता है क्रिया विषयों के त्याग की हो गए और अंदर में विषय की वासना उछल रही हो गए। अज्ञान दशा में तो ऐसा ही होता है प्राय भी लगा दिया है। तो उसको हम बेस बनाने का सोचा है। लेकिन पहले अनियोग की स्टाइल के बारे में आज अभी और दोपहर में चर्चा करेंगे, फिर कल उसका नंबर आएगा। तो आप देखिए इसमें आ गया चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान आया, प्लीज। ये अच्छा हमको सहायक मिल गया। देखिए वास्तव में बहुत महिमा आती है। हमने तो 10 साल पहले जब देवलाली आए थे तब मोक्षवान प्रकाशक का आदि 5 स्वाध्याय एक एक पंक्ति पंक्ति का किया। अब आज जब पढ़ा तो ऐसा लगे यार एक बार और कर लेना चाहिए, ऐसा मन में रस पैदा हो। व्याख्यान का विधान यानी व्याख्यान के नियम क्या हैं, उसके आधार बिंदु क्या हैं, दिशा निर्देश क्या है। यानी कोई जीव यदि चरणानुयोग लिखना चाहे तो कौन से पॉइंट हैं जो उसे ख्याल में रखना चाहिए। चरणानुयोग में जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है। कितनी सरल भाषा है, बुद्धि गोचर धर्म का आचरण कहो तो उसके दिमाग में जल्दी बैठ जाए, बुद्धि में आ जाए। त्रिकाली ध्रुव की बात, भगवान आत्मा की बात, उसकी अनुभूति की बात, अनुभूति की प्रक्रिया की बात, वो सब ज्ञान में संपन्न होती है। वो सब सॉफ्टवेयर वाला खेल है, वो सब फीलिंग की बात है। और सबसे बड़ी बात तो दृष्टि पलटने की बात है। धर्म की शुरुआत, धर्म का पहला कदम वो दृष्टि परिवर्तन से ही होता है। उसके लिए तत्व ज्ञान चाहिए, ख्याल में आया ना। तो जिसको समझ लो उसे समझने की अकल है, या सॉफ्टवेयर को जो समझ सकता है उसको द्रव्यान योग उपयोगी होता है। सब जीवों को समझ लो ये काम में नहीं आता है। बाल बुद्धि वालों को, स्थूल बुद्धि वालों को, ये तो आज गुरुदेव का महाप्रताप है कि लाखों जीव द्रव्यान योग के रसिक दिखाई देते। उनके उदय के पहले तो पता ही नहीं था कि जैन धर्म में समय सार और भगवान आत्मा भी कोई चीज है। और मालूम भी था तो विद्वानों की चर्चा या उनके ज्ञान तक ही सीमित रहता था। और वो ही सभा में लोगों का मन नहीं लगेगा, लोगों को नींद आएगी, लोग उठ के भग जाएंगे, मतलब वो रसिक वस्तु नहीं थी। ये तो जैसा ऊंचा तत्व ज्ञान है द्रव्यान योग, वैसा ही ऊंचा वक्ता आया तब समझ लो वो सुमेल बैठा, तब वो चीज समाज में जाहिर हुई। अन्यथा आम जीवों के लिए, सामान्य जीवों के लिए तो ये चरणानुयोग की शैली ही उपयोगी। और आज अपन भले थोड़े अध्यात्म के रसिक हो गए, लेकिन हर जीव को बचपन से ही ट्रेनिंग मिलती है, वो क्रिया की माध्यम से मिलती। माँ बाप मुमुक्षु होवे, हो सकता है सम्यक दृष्टि भी होवे, ख्याल में आया ना, लेकिन वो अपने बच्चे को सिखाएंगे तो चरणानुयोग से सिखाएंगे, उंगली पकड़ के मंदिर लाएंगे, ख्याल में आया ना। भगवान जी बैठे हैं, अपने भाऊ भाई को क्रिया से ही सिखाते। वो बच्चे शोर करते हैं, भगवान बनना है कि नहीं बनना है, सबको भगवान बनना है कि नहीं बनना है, हाजी के नाजी ऐसा बुलवाएंगे। अच्छा तो भगवान कैसे बैठे हैं, हाथ पे हाथ धरे, हाथ पांच बन कर बैठ जाओ। तो ये क्रिया की प्रधानता। मुझे याद है हमारा भतीजा बहुत, जब वो साल दो साल का था, अपने यहाँ बिमला बहन रहती थी, ब्रह्मचारी बिमला में जयपुर में ही रहती हैं, तो वो हमारे घर पे प्रायः आया जाया करती थी। उन्होंने मुझे बहुत ये सपोर्ट किया इस मार्ग में प्रारंभ में। तो उसको बोलती थी अनु मुनि बन के बताओ, तो तुरंत पेंट उतार देगा, कपड़ा उतार देगा और एक छोटी सी वो झाड़ू ले लेगा और ऐसे कर समझ में आया। यानी उन बच्चों को मुनि की पहचान किस रूप में है। और वो तीन कथाएं के अभाव वाले हैं, स्वरूप के आनंद में झूलते हैं, वो तो उनको नहीं है ना कॉन्सेप्ट, वो तो अभी भाषा भी नहीं जानते। लेकिन जो मुनि शब्द नहीं जानता, मुनि का मतलब नहीं जानता, वो ये जानता है कि महाराज जी जो है वो मुनिराज जो है मुनि महाराज, उनका ये स्वरूप होता है। तो बचपन से सदाचरण की शिक्षा, सब समागम की शिक्षा, पाठशाला जाओ, ख्याल में आए ना, पाठशाला में पढ़ो, जो याद करके सुनाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, आप बोलो ये कौन से अनियोग की ट्रेनिंग है? ये सब ये चरणानियोग की ट्रेनिंग। क्रिया में धर्म नहीं होने पर भी वो क्रिया की पैकिंग में ही अध्यात्म का माल रहता है। क्या बोला? पैकिंग जुड़ी है, माल जुड़ा है, लेकिन वो माल सुरक्षित रहेगा तो वो पैकिंग के भीतर ही रहेगा। और माल की पहली पहचान पैकिंग से ही होती है। माल तो बाद में पैकिंग तोड़ेंगे तब मिलेगा, फिर पैकिंग के ऊपर उसका नाम लिखा रहेगा, उसका चित्र बना रहेगा, उसके डिटेल्स लिखे रहेंगे, उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी रहेगी। समझ में आया ना? तो इस तरह से जीवन में धर्म की पहली शिक्षा आचरण के माध्यम से और दूसरा उपाय कहानियों के माध्यम से। ये दो अनियोग जो हैं, इनका सबसे पहले हमारे जीवन में परिचय और प्रवेश होता है। जिन माताओं बहनों ने अपने बच्चों को राम रावण की कथाएं सुनाई हैं, अंजना की कथाएं सुनाई हैं, अंजन चोर की कथा सुनाई है, आदिनाथ की, महावीर की, ये चरित्र पुराण ये सब सुनाए हैं, तो वे संस्कार उन बच्चों के ऐसे पढ़ते हैं कि यौवन में वे अमेरिका चले जाएं, वहां जॉब करने लगे तो भी उनके अंदर ये सदाचार और तत्वज्ञान के संस्कार सुरक्षित रहते। कई बच्चे तो बहुत ज्यादा इतना कमाल करते हैं, वो हमसे ज्यादा आप लोग जानते हो। तो देखो, बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है, समझ में आए सीधे भाई रात्रि भोजन नहीं करना, क्यों नहीं करना? हिंसा बहुत होती, जीव मरते हैं, पाप लगता है। समझ में आया? अब देखना, पंडित जी ने कमेंट भी साथ में किया, वहां धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वो ही है। जो क्रिया करवाई जा रही है वो तो शारीरिक क्रिया है, उसमें आत्मा का धर्म नहीं है। मतलब चरणान योग जल की क्रिया को धर्म नहीं बताता, ख्याल में आया ना? वो अध्यात्म का या आत्मानुभूति का विरोधी नहीं है, बल्कि उसका सपोर्ट करने वाला है, उसके लिए उचित भूमिका तैयार करने वाला है। तो धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वही है, उसके साधन आदि उपचार से धर्म है। देखो इसमें भी नए लगा है, उसके साधन जो है बाह्य त्याग सदाचरण इत्यादि उपचार से धर्म कहा जाता है, और वो कहे बिना व्यवहार चलता नहीं, उसके बिना परमार्थ का प्रतिपादन नहीं होता। इसलिए व्यवहार न की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के भेद आदिकों का इसमें निरूपण किया गया है। उपचार धर्म के भेद, क्या बोला? उपचार धर्म के भेद, यानी धर्म तो है नहीं, लेकिन धर्म का निमित्त है, धर्म का सहचारी है, धर्म की पैकिंग है, तो उसको भिन्न भिन्न प्रकार से, समझ में आया? ये अणुव्रत, 12 व्रत, 11 प्रतिमाएं, तो मुनियों के आचरण, ऐसे बहुत भेद प्रभेद करके समझाते, आचरण की भी बारीकियां बता करके उसके परिणामों में किस प्रकार का सूक्ष्म परिणमन चलता है उसका ज्ञान करा देते। क्योंकि निश्चय धर्म में तो, बहुत सुंदर वाक्य है ये, निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है। वाह, क्यों नहीं है? भगवान आत्मा त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति वाला है। अरे ग्रहण ही नहीं किया है तो त्याग क्या करना? अगर ग्रहण करना का उपदेश व्यवहार से भी दिया जाए तो ये दिया जाएगा कि भैया पर का ग्रहण नहीं किया, पर को अपना माना, मान्यता में ग्रहण किया है तो वो मान्यता छोड़ने लायक है। ये भी व्यवहार की बात है, लेकिन जहाँ चैतन्य की अनुभूति में जीव पहुंच गया तो न ग्रहण का विकल्प है, जैसे बंध का विकल्प नहीं, मोक्ष का विकल्प नहीं, तो ग्रहण का विकल्प नहीं और त्याग का विकल्प नहीं। अभी एक बहुत मार्मिक बात इसमें लिखी, ये चरणानियोग को समझ लो सिद्ध करती, निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं, ये क्या तो निर्विकल्प में तो कोई विकल्प है ही नहीं ना ग्रहण का ना त्याग का है, लेकिन परमानेंट अगर वो निर्विकल्प हो जाए केवली भगवान जैसा तो बातें खत्म होगी, अब अनुयोग की जरूरत ही नहीं है, अब तो अनुयोगों का फल प्राप्त हो गया। लेकिन हम जिस भूमिका में हैं, समझो निचली भूमिका वाले चौथा पांचवा छठवा और उसके भी पहले सम्यक सन्मुखता, निचली भूमिका नवीन भाई कहां से ले सकते हैं, सम्यक सन्मुखता से। तो निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है, इसलिए इस जीव को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का किसका उपदेश देते हैं, किसका त्याग कराते हैं, धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधन आदि कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश देते हैं। वो भी सर्वथा नहीं छूट पाए तो उसमें लिमिट कराए। वो पहले हमारे युवा फेडरेशन ने एक प्रतियोगिता निकाली थी, अभी भी कई जगह कई रूपों में चलती है, एक नियम लेने का एक बॉक्स बनाया, जैसे बच्चों की गुल्लक होती है ना पैसे डालने की, और उसमें 100 उन्होंने चिट डाल दी है, अब आंख मूंछ के एक चिट निकालो तो उसमें लिखा आज टीवी नहीं देखूंगा, दो दिन टीवी नहीं देखना, समझ में आया, आज सिनेमा नहीं देखूंगा, आज ये नहीं करूंगा, पता नहीं उसमें आज मोबाइल यूज नहीं करूंगा, ऐसे लिखते कि नहीं आज इंटरनेट भी यूज नहीं करूंगा, समझ में आया ना। तो ये सब चीजें हमारे व्यवहार मार्ग में भी बाधक है, ये जितने भी फंसाने वाले चीजें हैं, विषय कसाई की पोषक और पड़ से जोड़ने की, ये हमारे व्यवहार धर्म साधन में भी बाधक है, तो उनका त्याग कराते हैं और धर्म साधन के कार्यों को ग्रहण करने का उपदेश देते। आज की चर्चा में एक अंतिम बात कहकर पूरी करता हूं। ये प्रश्न बहुत होता है, एक बार तो मैं समझ लो किसी शहर में एयरपोर्ट, न्यूयॉर्क की बात है, तो मुझे एयरपोर्ट आना था और कोई फैमिली कोई लेडी थी, उसको मेरे से कुछ चर्चा करनी थी, तो उन्हें वहां ये सिस्टम बहुत है, मतलब इस समय का सदुपयोग, आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने आ जाऊंगी और रस्ते में जो एक घंटा मिलेगा ना तो उसमें मैं चर्चा कर लूंगी। मुझे बड़ी महिमा आई इस बात की, देखो समय के सदुपयोग की। तो उनने कई बातें की, एक प्रश्न मुख्य था, साहब ये तत्व ज्ञान हमें सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर जैसा आप कहते हो कि कोई किसी का भला भला नहीं कर सकता, तो अगर हमने इसको मान लिया तो हम अपने बच्चों को डांट सकते कि नहीं डांट सकते, ये सही घटना है बिल्कुल, ये प्रश्न था उसका अभिम जी भाई, तो हम अपने बच्चों को डांट सकते कि नहीं डांट सकते, ऐसा नहीं करने, इनका अमेरिका में तो वैसे ही नहीं डांट सकते, जरा ही डांटा तो 911 फोन नंबर हो जाएगा। तो मैंने इसी पॉइंट पे कोशिश की कि देखिए जो श्रद्धा वाला मामला है वो तो अपने मोक्ष मार्ग के लिए, श्रद्धा काय के लिए है, अपने मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए, अपने भव का अंत करने के लिए, और जो आचरण वाला मामला है वो हमारी वर्तमान भूमिका के अनुसार डील होता है। तो ये ज्ञानी भी ये जानते हैं कि कोई किसी का भला नहीं कर सकता, तो भी आचार्यों ने ग्रंथ लिखे कि नहीं लिखे, फिर उन्होंने ग्रंथों में फटकार लगाई कि नहीं लगाई, रे मूढ़ रे अज्ञानी ऐसा कहके उसको फटकार भी लगाई, और हे भव्य जीव ऐसा कहके प्यार भरा संबोधन भी किया। तो जो आचरण होता है वो विकल्पों के अनुसार होता है, श्रद्धान के अनुसार नहीं, विकल्प टूटेंगे तो आचरण चेंज होगा, अकेली श्रद्धा से नहीं होगा। फिर से क्या बोला, विकल्प टूटेंगे तो आचरण में परिवर्तन आएगा, अकेली श्रद्धा से नहीं आएगा, समझ में आया भैया। तो ज्ञानी भी भव्य जीवों को उपदेश, एक केवली होते ऐसे होते हैं जो बिना इच्छा के जिनका उपदेश वाली खेल दी, बाकी निचली भूमिका में तो विकल्प के अनुसार कार्य होता है। तो अपने को बच्चों से राग है और हमें तो पता नहीं कि उनकी होनहार में अच्छा लिखा है कि बुरा लिखा है, क्या लिखा है, हमें तो नहीं पता ना, तो हम तो यही कोशिश करेंगे कि वो सन्मार्ग पर लगे। इसलिए इतने स्कूल खुलते हैं, विद्यालय खुलते हैं, शिविर लगते हैं, किताबें लिखी जाती है, उनको जोड़ने की कोशिश की जाती है। तो उसमें कोई आप अपनी श्रद्धा के विरुद्ध काम कर रहे हैं कि धर्म का विरुद्ध काम कर रहे हैं, ऐसा मत समझिए। यही बात मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ। आता है आप तो समझते ही होंगे, क्योंकि उन्हें जो मैंने कहा वो आपको बताया। दोपहर के सेशन में अपन इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, अभी समय हो गया इसलिए यहीं विराम लेते हैं।